اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراج ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کے سبھی شروتاؤں کو زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. پریہ شروتاؤں, آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 207 سے 209 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں. تلاوت کا شرح پایا ہے شری سبز علی نے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے, اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے, اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت کرونا میں ہے. ہے ایمان والو, تم سب پورن روپ سے اسلام میں پرویشت ہو جاؤ اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو, کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے. پھر یدی تم اسپشٹ نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, फरवरी दिन की 20, रमजान की 7 और अप्रैल की 9 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi और व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप रमजान के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा परमाणु तकनीक दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो इतिहास से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहतादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान में परमाणु उद्योग का राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रपति ने कई योजनाओं का किया अनावरण। तेहरान का कहना है कि फिलिस्तीनियों का समर्थन जारी रहेगा। अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता छोड़ने की अपील। अमेरिका ने रूस और बेलारूस से व्यापारिक संबंध तोड़ लिए। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
परमाणु ईंधन चक्र को पूरा करने के लिए ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के गौरवपूर्ण प्रयासों की मान्यता व सम्मान में ईरान में 9 अप्रैल को परमाणु प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय दिवस नाम दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 में आज ही के दिन ईरानी वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला पैमाने पर परमाणु ईंधन का एक पूरा चक्र तैयार करने में सफलता हासिल की थी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के दुश्मनों की अन्यायपूर्ण पाबंदियों से पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद परमाणु तकनीक और विज्ञान के विभिन्न शाखाओं की परियोजनाएं पूरी गति से जारी। उद्योग, मेडिकल और कृषि के क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां ये बताती हैं कि ये प्रक्रिया नहीं रुकेगी। गौरतलब है कि शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी की प्राप्ति का एक फायदा ये मिला कि इस्लामी गणतंत्र ईरान में अहम वैज्ञानिक शाखाओं और उद्योगों के फलने फूलने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून व प्रतिबद्धताओं का पालन और दुनिया के साथ सहयोग करते हुए राष्ट्रीय हित व सम्मान के आधार पर अपनी उपलब्धियां बढ़ाता जा रहा है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण परमाणु उद्योग में शोध और विकास का समर्थन करती है। परमाणु तकनीक के राष्ट्रीय दिन के अवसर पर परमाणु टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली एक प्रदर्शन के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का कहना था कि परमाणु क्षेत्र में ईरानी युवाओं और वैज्ञानिकों ने जो बड़े काम अंजाम दिए हैं वो गौरवपूर्ण हैं। राष्ट्रपति ने परमाणु क्षेत्र में देश के विकास को युवा पीढ़ी और वैज्ञानिकों की आत्मनिर्भरता और आंतरिक क्षमताओं पर भरोसे का परिणाम करार दिया। सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि जिस जज्बे और लगन से परमाणु क्षेत्र ने विकास किया है, ऐसा दूसरे उद्योगों में भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण प्रयोग को ईरान का मूल अधिकार करार देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी और देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास और जहादी बुनियादों पर काम का मॉडल हमेशा कामयाब रहा है और अन्य क्षेत्रों को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने यह बात बल देकर कही कि ईरान अपने परमाणु विकास के लिए किसी दूसरे देश की राय और मर्जी की मोहताज नहीं है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने फिलिस्तीनी प्रतिरोधक बलों का समर्थन करते हुए निहत्थे फिलिस्तीनियों द्वारा अवैध ज़ायोनी शासन के खिलाफ संघर्ष को वैध, स्पष्ट और स्वाभाविक अधिकार करार दिया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीब जादे ने शुक्रवार की रात एक बयान जारी करके कहा कि इसराइल द्वारा हर दिन फिलिस्तीनियों पर किए जाने वाले अत्याचार, इसी तरह कट्टरपंथी यहूदियों द्वारा निरंतर बैतुल मुकद्दस में पवित्र स्थलों का अपमान किया जाना, ये सब वो कारण है कि जिसका जवाब फिलिस्तीनी राष्ट्र अपने प्रतिरोध के जरिए दे रहे हैं। खतीब जादे ने कहा कि इसराइल के आतंकी सैनिक खुले आम फिलिस्तीनियों को मौत घाट उतार रहे हैं, इसी तरह अवैध ज़ायोनी शासन द्वारा हर दिन फिलिस्तीनियों को अपमानित किया जा रहा है। बेगुनाह युवाओं, बच्चों और महिलाओं को गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में भरा जा रहा है। इसके अलावा इसराइल फिलिस्तीनी जनता पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली अशांति के लिए पूर्ण रूप से इसराइल ही जिम्मेदार है।
कुवैत ने फारस की खाड़ी में सीमाओं के निर्धारण और संयुक्त ऑयल फील्ड से फायदा उठाने के बारे में ईरान के साथ दोबारा वार्ता शुरू करने के लिए अपनी दोबारा तत्परता का ऐलान किया है। कुवैत के विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष से वार्ता में कहा कि उनका देश जल क्षेत्र के निर्धारण और संयुक्त ऑयल फील्ड से फायदा उठाए जाने के बारे में वार्ता शुरू करने को तैयार है। शुक्रवार को ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायन और उनके कुवैत समकक्ष शेख अहमद नासिर मोहम्मद सभा के बीच टेलीफोनी वार्ता हुई। इस वार्ता में आपसी रुचि के विषय, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया गया। कुवैत के विदेश मंत्री शेख अहमद नासिर सभा ने यमन में युद्ध विराम और ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए वियना वार्ता की स्थिति के बारे में भी वार्ता की। इसके अलावा उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष को कुवैत दौरे का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि कुवैत ईरान के साथ संबंधों को विस्तृत करने के लिए तैयार है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता ने एक बार फिर इस बात पर बल दिया है कि वियना में ईरान के साथ जारी वार्ता में परमाणु समझौता न ही सुनिश्चित है न ही नजदीक। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दुनिया के सामने दिखाते हुए परमाणु समझौते के बारे में कहा कि वियना में जारी वार्ता का अर्थ न निकाला जाए कि ईरान के साथ परमाणु समझौता सुनिश्चित है या नज़दीक। गौरतलब है कि ईरान पर लगे अमेरिका के गैर कानूनी प्रतिबंधों को हटवाने के उद्देश्य से विश्व शक्तियों के साथ 27 दिसंबर वर्ष 2021 को आठवें दौर की वार्ता शुरू हुई है, जो 11 मार्च 2022 को यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल के प्रस्ताव पर सलाह मशवरे के लिए रुकी है और वार्ताकार अपनी अपनी राजधानियों को लौटे हैं। उस समय के बाद से दोनों पक्षों ने वार्ता में प्रगति और मतभेद के मुद्दों के कम होने की बात कही, लेकिन समझौते की गारंटी का विषय और ईरान के अधिकारियों, संस्थाओं और कंपनियों को पाबंदियों की लिस्ट से निकालने का मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है।
इसराइल की हिंसा और उसके आतंकवाद के विरुद्ध फिलिस्तीनी युवाओं की शहादत प्रेमी कार्रवाई से जानी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ तेल अविव की सड़कों पर रास्ता चलने से भी डर रहे हैं। इरना की रिपोर्ट के अनुसार आईओ खोखावी ने इसराइली सुरक्षा बलों की असफलता को स्वीकार करते हुए कहा कि इसराइल के सुरक्षा कर्मियों को, जो हालात पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहे हैं, पराजय का सामना करना पड़ा और कार्रवाई करने वाला बड़ी आसानी से घटनास्थल से फरार होने में सफल रहा। उन्होंने अवैध अधिकृत इलाकों की वर्तमान स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि कॉलोनियों के निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और यह स्थिति लंबी अवधि तक बनी रहेगी।
अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत गुट निरपेक्ष समूह में शामिल देशों के संगठन G77 के तहत रूस के साथ अपने संबंधों और साझेदारी को घटाए और गुट निरपेक्षता का सिद्धांत छोड़ दे। शर्मन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के समक्ष ये बात कही और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस और बेलारूस के साथ सामान्य व्यापार संबंधों को रद्द करने और अमेरिका में रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को रूस और बेलारूस के खिलाफ कई अन्य प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो बाइडेन ने रूस से तेल आयात और सामान्य व्यापार सहित बेलारूस से भी अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ये कुछ ऐसा है जिसका राष्ट्रपति समर्थन करते हैं, इसके लिए आह्वान किया था और निश्चित रूप से इस पर हस्ताक्षर करने की योजना को व्यवहारिक बनाया है। गौरतलब है कि 24 फरवरी से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना विशेष सैन्य अभियान आरंभ किया है, जिसको अब 6 हफ्ते बीत रहे हैं। इस दौरान अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।
और अंत में यह समाचार कि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को वाशिंगटन के नए प्रतिबंधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रूस के विदेश मंत्रालय ने उत्तरी अमेरिका के मामलों के विभाग के प्रमुख हवाला देते हुए कहा एक बयान में कहा कि हम जल्द ही भविष्य में जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। उधर अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का रूस के रवैये पर कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
तो आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे इस्लामी गणतंत्र ईरान और रूस के बीच बढ़ते सहयोग की।
با توجه به مدیریت پروژه توسعه روابط اقتصادی با روسیه و اوراسیا
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम कश्मीर के गुपकार अलायंस के महत्वपूर्ण बयान पर भी एक नजर डालेंगे।
आज लड़ाई मुफ्त बिजली पानी की नहीं है।
अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट पैदा होने लगा है। ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। राजनीतिक चर्चा के विषय यही हैं। शुरू करते हैं ईरान रूस सहयोग से। इस्लामी गणतंत्र ईरान और रूस के अधिकारियों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में बातचीत का क्रम जारी है। ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण और सार्थक रही है। मॉस्को से सैयद अली दारावी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान का बड़ा व्यापारिक शिष्टमंडल जिसमें 70 प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के प्रतिनिधि और प्रबंधक शामिल हैं पिछले 4 दिनों से روس کی سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیوں کے ادھیکاریوں اور پربندھکوں سے ویاپارک لین دین اور امریکہ تتھا پشچمی پرتبندھوں کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے آرتھک اور ویاپارک معاملے کو آسان بنانے پر وچار ومرش کر رہے ہیں. روس کے ایک ادھیکاری کا کہنا ہے کہ ایران اور روس کے ویاپارک کونسل نے دونوں دیشوں کی ان کمپنیوں کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور پرتبندھوں تتھا روس سے پشچمی کمپنیوں کے نکلنے کی وجہ سے ایرانی کمپنیاں ودیشی کمپنیوں کی جگہ تیزی سے بھر سکتی ہیں.
به عنوان ایک مقام روس در این همایش اومدم و دیدم
میں اس کارکرم میں ایک روسی ویاپاری کے روپ میں شامل ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو حالات دونوں دیشوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان سے بھرپور ڈھنگ سے فائدہ اٹھایا جائے اور یہ دونوں دیشوں کے ہت میں ہوگا.
اتاق ایران آمادگی کامل را داره.
ایران کا وانیجیک ککش روسی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے اور انہیں ویوہارک بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے.
با توجہ به مدیریت پروژه توسعه روابط اقتصادی با روسیه و اوراسیا،
روس اور یوریشیا کے ساتھ ہمارے ویوہارک سمبندھوں کے درشٹیگت ہم ایک بڑا پرتنیدھی منڈل روس بھیجنا چاہتے تھے.
20% ورود.
ایک ان ایرانی ادھیکاری کا کہنا ہے کہ ہم روس کو سیمنٹ نریات کر رہے ہیں اور ہم نے 1.5 لاکھ ٹن سے 5 لاکھ ٹن نریات کو ٹارگیٹ بنا رکھا ہے اور ہم اس ٹارگیٹ پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ماں آمادگی داریم برای.
ایک انیہ ایرانی ادھیکاری کا کہنا ہے کہ ہم نریات کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے سامنے بڑی سمسیا پشو پالن کے شیتر میں ہے اور اگر یہ بادھا دور ہو جاتی ہے تو جیسے ہم انیہ شیتروں میں روس کے لیے اتپادن نریات کر رہے ہیں اسی طرح سے دگدھ اور انیہ شیتروں میں بھی ہم نریات کریں گے. روس کے ایک ویاپاری کا کہنا ہے کہ ایران کی گنتی چکتسا اپکرنوں اور سنسادنوں کے نرمان کے شیتر میں دنیا کے بہترین دیشوں میں ہوتی ہے. ہم دوا نرمان اور اپکرنوں کے شیتر میں ایرانی کمپنیوں کے ساتھ سہیوگ کے لیے تیار ہیں.
در شرائط کے امروز قرار گرفتیم.
ہمارے سامنے سب سے بڑا ٹارگیٹ چکتسا اپکرنوں کا نریات ہے.
وقتی ما صنعتی کفش میں صادر میکنیم.
ہم روس کے لیے جوتے اور چمڑے کا نریات کر رہے ہیں اور اس میں وردھی کی کوشش کر رہے ہیں.
امیدواریم بتونیم در امور.
ایک انیہ ایرانی ادھیکاری کا کہنا ہے کہ ہم روس کے ساتھ کئی شیتروں میں بڑے بڑے سمجھوتے کر سکتے ہیں. ویاپارک، اودیوگک، کرشی اور وگیان تکنیک کے شیتر میں سکری ایران اور روس کی دسویں کمپنیوں کے پرتنیدھیوں نے آپس میں بات چیت کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان وارتاؤں کا پرینام دسویں سمجھوتوں اور سہمتی نوٹس کے روپ میں سامنے آئے گا. سید علی دارابی، IRIB نیوز، ماسکو.
بھارت نینترت کشمیر کے گپکار الائنس کی اور سے کیندر سرکار پر کئی آروپ لگائے گئے ہیں. ساتھ ہی کشمیر کی جنتا سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک جٹ ہو کر کشمیر کے استتو کی لڑائی لڑے. شری نگر سے سپت محمد حسن کی رپورٹ.
جموں کشمیر کے وپکشی دلوں کے گٹھ بندھن گپکار الائنس نے ایک بار پھر نئی دہلی پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. نیشنل کانفرنس کی اور سے ایک باری جن سبھا کے بیچ PAGD کے پروکتا نے کہا کہ اب سمے آ گیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ ایک جٹ ہو کر نئی دہلیوں کے ان نیتوں کا بھرپور مقابلہ کریں جو پچھلے 3 ورشوں سے جاری ہیں. PAGD کے نیتاؤں نے کہا کہ اس سمے لڑائی جو نئی دہلی اور کشمیر کے بیچ ہے وہ جموں کشمیر کے وشیش اختیارات کی لڑائی ہے. انہوں نے کہا کہ تعمیر و ترقی کے نام پر لوگوں کو بہلایا اور پھسلایا نہیں جا سکتا ہے. اس اوسر پر PAGD کے پروکتا نے کہا،
آج لڑائی مفت بجلی پانی کی نہیں ہے، آج لڑائی دیوار یا گلی کوچے کی نہیں ہے، آج جموں کشمیر کے عوام کے وجود کی لڑائی ہے، اس ریاست کے تقدس کی لڑائی ہے، اس ریاست کے تشخص کی لڑائی ہے، ہماری آنے والے نسلوں کے مستقبل کی لڑائی ہے. اور آج وقت کی ضرورت ہے، وقت کی پکار ہے کہ جہاں ایک طرف PAGD اکٹھا ہو چکی ہے، PAGD کے قائدین اگر اپنی انا کو اس وقت دفن کر چکے ہیں ایک بڑے قومی مفاد کی خاطر، ریاست جموں کشمیر کے عوام الناس کے مفاد کی خاطر، وہیں میں آپ کے وسادت سے ریاست جموں کشمیر کے عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی متحد ہو جائیں، وہ بھی اکٹھا ہو جائیں اس جدوجہد میں جو اس آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ہے، اس کے لیے اکٹھا ہو کے سر سے سر ملا کے وہ جد جو جدوجہد میں حصہ لیں تاکہ ان سازشی عناصر کو ان کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور ریاست جموں کشمیر کا کھویا ہوا وقار، کھویا ہوا مقام جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے۔
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم جاری ہے۔ دکشنی کشمیر کے بیج بہاڑا میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاؤں وادی چھاپوں ماروں کے بیچ ایک مڈبیڑ میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک استھانیہ کمانڈر، جس کی پہچان نثار احمد کے بطور بتائی گئی ہے، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہتاہت ہونے کے سماچار پراپت ہوئے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف کشمیر پولیس وجے کمار نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ سرکشا کرمیوں نے ایک وشیش سوچنا ملنے کے ترنت بعد بیج بہاڑا کے ایک نکٹوردی چھیتر کا گھیراؤ کیا اور تلاشی ابھیان آرمبھ کیا، جس کے بیچ گھیرے میں آئے الگاؤں وادی چھاپا ماروں اور سرکشا بلوں کے بیچ ایک مڈبیڑ آرمبھ ہوئی جو کافی سمے تک جاری رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس مڈبیڑ میں نثار احمد نامی لشکر طیبہ کا کمانڈر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہتاہت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپریشن جاری ہے اور بیورے کی پرتیکشا ہے۔ اس بیچ دکشنی کشمیر کے ہی کلگام میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاؤ وادیوں کے بیچ ایک الگ مڈبیڑ کے بھی سماچار پراپت ہوئے ہیں، پرنتو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر الگاؤ وادی چھاپہ مار سرکشا بلوں کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں سفل ہوئے ہیں۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کارکرم راجنیتک چرچا۔
افریقی دیشوں میں کھادیہ سنکٹ اتپن ہونے لگا ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس سے مرنے والوں کی سنکھیا روس یوکرین یدھ میں مرنے والوں کی سنکھیا سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ کوروش فخر تاولی کی رپورٹ سنیے روش زیدی سے۔
افریقہ کے پشمی اور تٹیے علاقوں میں ایک بار پھر بھیشن کھاد سنکٹ چھا گیا ہے۔ کھاد ایوم کرشی سنگٹھن فاو نے چیتاونی دی ہے کہ جون مہینے تک افریقہ کے ان دونوں علاقوں کے لگ بھگ 4 کروڑ لوگ بھیشن اکال کی چپیٹ میں ہوں گے۔ فاو کے ورشٹھ وشیشک لوکا روسو کہتے ہیں کہ اسرکشا، سوکھا، سنرچناتمک غریبی اور نشچت روپ سے کرونا مہاماری اور یوکرین یدھ کے پریناموں نے پشچم اور افریقی تٹ میں کھاد سنکٹ کو بڑھا دیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حال کے سپتاہوں میں یوکرین یدھ نے افریقہ میں بنیادی وستوؤں کی کمی میں وشیش روپ سے مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے، کیونکہ افریقی دیش اپنا ادھکانش اناج روس اور یوکرین سے آیات کرتے ہیں۔ کرشی اور ستت وکاس کے وشیشگ برونو پارمنٹیئر کہتے ہیں کھاد سنکٹ سے جوجھ رہے افریقی دیشوں میں مرنے والوں کی سنکھیا خود یوکرین یدھ میں ہتاحت ہونے والوں کی سنکھیا سے ادھک ہوگی۔ روس اور یوکرین دنیا کے 40% سے ادھک اناج نریات کی آپورتی کرتے ہیں۔ یوکرین یدھ کے جاری رہنے نے ان سنکٹوں کے ساتھ ساتھ غریب افریقی دیشوں کو پہلے سے کہیں ادھک نازک استھتی میں پہنچا دیا ہے۔ برکینا میں گیہوں کے آیات کا 30% روس سے ہوتا ہے۔ سوکھے کے جاری رہنے کے ساتھ ساتھ اناج کی بڑھتی قیمتوں نے برکینا فاسو اور اس کے پڑوسی دیشوں کے ایک بہت بڑے علاقے کو اکال کی چپیٹ میں ڈال دیا ہے۔ اس سمے جس تیزی سے پشچم اور تٹیے افریقی دیشوں کو اکال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ابھوتپور ہے، جس کے کارن عام لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی سرکاروں کی بھی چنتائیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس علاقے میں اس سمے لگ بھگ 3,70,00,000 لوگ کھادیہ سنکٹ سے جوجھ رہے ہیں، جب کی 4 سال پہلے تک کھاد سنکٹ کا سامنا کرنے والوں کی سنکھیا کیول 90,00,000 تھی۔ ابھی جان پشمی افریقہ کے آج تٹیے علاقے سے IRIB کے لیے کروش فخر تاولی کی رپورٹ۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کارکرم سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتاؤ، اب پرستت ہے رمضان کے سمبندھ میں ہمارا وشیش کارکرم، جس کے بعد آپ ईरान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम सुनेंगे।
ईश्वरीय आतिथ्य।
श्रोताओ, रमजान महीने के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आइए पहले रमजान महीने के सातवें दिन की दुआ और उसका अनुवाद सुनते हैं।
अल्लाहुम्मा अन्नी फीहे अला सियामही व कियामे व जन्नबनी توفيقك يا هادي المضلين
हे मेहरबान, आज के दिन रोजा रखने और नमाज पढ़ने में मेरी सहायता कर, गुनाहों से मुझे दूर कर दे। आज के दिन मुझे हर लम्हा लगातार याद रखने में मेरी मदद कर, तेरी ओर से मदद की आशा के साथ। हे रास्ता भटक जाने वालों को सही रास्ता दिखाने वाले।
हम मेहरबान ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपनी बेपनाह नेमतों से हमको नवाजा और हम पर ये उपकार किया कि एक बार फिर रमजान के महीने की बरकतों को महसूस करें। 1400 साल पहले जब हिजाज के पूरे इलाके पर जहालत की काली छाया थी, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रोजा रखो ताकि स्वस्थ हो जाओ। अलग अलग धर्मों में ये बात कही गई है कि रोजा इंसान की आत्मा और शरीर दोनों के लिए लाभदायक है। आज के कार्यक्रम में हम पिछले युगों में रोजा और रमजान की क्या स्थिति थी, इस बारे में बात करेंगे।
इस्लाम से पहले ईसाई धर्म में भी रोजा और रोजादारी का सिलसिला रहा, बल्कि यहूदी धर्म में भी यही प्रचलित था। यहाँ तक कि गैर आसमानी धर्मों में भी कुछ विशिष्ट दिनों में खाना पीना छोड़ देने की सिफारिश की गई है। प्राचीन यूनान में लोग बीमारी के इलाज के लिए मशहूर पूजा स्थल पर जाते थे और स्नान के बाद रोजा रखते थे और बीमारियों से निजात देने वाले विशेष खुदा से अपनी बीमारी ठीक होने की दुआ मांगते थे।
हिंदू धर्म बड़ा प्राचीन धर्म है जो 3 या 4 हजार साल ईसा पूर्व पूर्वी इलाकों में प्रचलित हुआ। इस धर्म के मानने वाले नए महीने के पहले दिन और धार्मिक समारोह के अवसर पर रोजा या व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म में रोजा रखने के कई तरीके हैं। एक रोजा वो है जिसमें गैर तरल चीजें खाने से परहेज किया जाता है और एक रोजा वो होता है जिसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। ये 24 घंटे का होता है। हर व्यक्ति खुद निर्णय लेता है कि उसे किस प्रकार का रोजा रखना है। इस रोजे का मकसद मन और अस्तित्व को पाक बनाना और सोच में पवित्रता पैदा करना होता है।
बौद्ध धर्म में आम तौर पर हर महीने की 14 तारीख को रोजा रखा जाता है, जिसमें केवल तरल वस्तुएं ही प्रयोग की जाती हैं। मानी धर्म के मानने वाले भी रोजेदारी को बड़ा महत्व देते हैं। इस धर्म के मानने वाले 2 प्रकार के रोजे रखते हैं। एक रोजा वो होता है जिसमें 2 दिन तक खाने पीने से परहेज किया जाता है और दूसरा रोजा वो होता है जिसमें सुबह से सूर्यास्त तक खाने पीने से परहेज किया जाता है। माने धर्म के लोग अपने उपासना स्थलों को मानस्थान कहते हैं। ہر اپاسنا استھل میں پانچ حال ہوتے ہیں، جن میں ایک حال روزہ رکھنے والوں اور ان کی دعاؤں کے لیے وشیش ہوتا ہے۔ مانی دھرم کے لوگ کھگول شاستر کی مدد سے روزے کے مہینے کا نردھارن کرتے تھے اور اس مہینے کے آخری دن میں عید مناتے تھے۔ عید کو بیما کہا جاتا تھا۔ اس دن لوگ مانی کی تصویر ہاتھ میں لے کر اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے۔ کچھ پستکوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ مورتیوں کی پوجا کرنے والے بھی روزہ رکھتے تھے۔
دوستو، لگ بھگ اتہاس کے ہر یگ میں اور ہر جاتی و سنسکرتی میں روزے داری دکھائی دیتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ روزے داری کا اتہاس اتنا پرانا ہے؟ اس کی وجہ شاید کچھ روایتوں میں مل سکتی ہے۔ ان روایتوں کے آدھار پر سب سے پہلا انسان جس نے روزہ رکھا وہ حضرت آدم تھے۔ جب حضرت آدم نے پرتبندھت پھل کھایا تو وہ پھل 30 دن تک ان کے پیٹ میں رہا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد پر 30 دن بھوکا اور پیاسا رہنا انیواریہ کر دیا۔ تو روزے داری ایک ذمہ داری ہے جو حضرت آدم سے ملی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ سمے گزرنے کے ساتھ گمراہ ہو گئے، مگر ان کے بیچ پرمپرائیں سرکشت رہیں۔ البتہ ان پرمپراؤں کو ادا کرنے کی شیلی الگ الگ تھی۔
اسلامی گیانوں کے وشیشگیوں کے بیچ ایک دلچسپ بحث یہ بھی تھی کہ پچھلی قوموں میں رمضان کے مہینے کو رمضان ہی کہا جاتا تھا یا نہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ رمضان نام اسلام آنے سے پہلے بہت پہلے اس مہینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کچھ اتہاسکار کہتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام پرانی بھاشا سے بدل کر نئی بھاشا میں رکھے جا رہے تھے، تب ہر مہینے کا نام اس کے واتاورن کے آدھار پر رکھا گیا، جیسے رمضان کا نام بھیشن گرمی کی وجہ سے رمضان رکھا گیا۔ لیکن ابھی ہم جو ساکھ آپ کے سامنے پیش کریں گے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی رمضان کو اسی نام سے جانا جاتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینوں کے نام بدلنے کی گھٹنا اسلام سے پہلے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اجانتا کے دور میں لوگ حج اس کے وشیش مہینے ذلحجہ میں انجام دیتے تھے اور ان کا نام بھی جانتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن مہینوں کو حرام مہینہ کہا جاتا تھا، یعنی جن میں کچھ کاموں کو حرام سمجھا جاتا تھا، وہ مہینے سب کے لیے بہت جانے پہچانے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں رمضان کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ست و اسد کے فرق کو اسپشٹ کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ مہینہ لوگوں کے لیے بہت جانا پہچانا تھا۔
دوستو، عام طور پر جب بھی کوئی قوم مایوسی کا شکار ہو جاتی تھی تو منت مانتی تھی کہ مایوسی دور کرنے اور سفلتا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گی، اللہ کی عبادت کرے گی۔ اس کام سے لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کرتے تھے، اپنے پاپوں کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کی پرسنتا حاصل کر لیتے تھے۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیت سنکھیا 183 میں اسلام سے پہلے کے دھرموں میں روزہ واجب ہونے کی بات کہتا ہے۔ آیت کہتی ہے کہ ہے ایمان لانے والے، روزہ تم پر واجب کیا گیا ہے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر واجب تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپدیش اور تبلیغ کی شیلی یہ ہوتی ہے کہ کٹھن کام کو بھی آسان بتایا جاتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ روزہ کیول تم مسلمانوں پر واجب نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں پر بھی یہ قانون لاگو تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سمے نیم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، جس پر عمل کرنا سبھی قوموں کا فرض رہا ہو۔ اس آیت سے یہ سندیش ملتا ہے کہ عبادت کا اُدیش انسان کے ویکتتو کا سنورنا ہے۔ روزہ رکھنے سے پرہیزگاری آتی ہے، روزہ روح کی پرورش کا ذریعہ ہے اور اس سے انسان جیون کے ہر میدان میں پرہیزگار بنتا ہے۔
یہ واجب دوسرے دھرموں میں بھی رہا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی روزہ کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پولس کی انجیل میں آیا ہے کہ ہمیشہ اور سمپردائے اور ہر قوم میں دکھ اور آکسمک پیڑ آنے کے سمے روزہ رکھنے کی پرتھا رہی ہے۔ لوکا کی انجیل میں بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو آدیش دیا کہ ان کے ندھن کے بعد روزہ رکھیں۔ توریت میں بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے 40 دن روزہ رکھا۔ توریت میں ان استھان پر کہا گیا ہے کہ یہودی قوم جب ونمرتا ظاہر کرنا چاہتی تھی تو روزہ رکھتی تھی تاکہ وہ اس طرح اللہ کو خوش کرے۔
قرآن مہان گرنتھ ہے۔ اگر پاکیزہ من سے اس کی آیتوں کے بارے میں چنتن کیا جائے تو ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹیں گے اور تتھیہ سامنے آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پوری جانکاری اور چیتنا کے ساتھ اس کی آیتوں کے بارے میں چنتن کریں۔ رمضان کے ان پوتر دنوں میں ہم نے قرآن کی تلاوت اور اس کی آیتیں پڑھ کر ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ادھک بنیادی قدم اٹھائیں اور خود کو باہر نکالیں جنہوں نے مانو جیون کو کٹھن بنا دیا ہے۔ آج وچارکوں کو یقین ہو چلا ہے کہ اس آسمانی کتاب میں جگہ جگہ بہت سارے رہسیہ چھپے ہیں جنہیں گہرے ادھیان اور چنتن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ سورہ 7 کی آیت 29 میں کہتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے جو تم پر ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور سمجھدار لوگ سچیت ہوں۔
اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ قرآن نازل کرنے کا مکھ لکش ہی چنتن ہے تاکہ لوگ کیول قرآن پڑھنے کو کافی نہ سمجھ بیٹھیں۔ چنتن کا مطلب ہے کہ حالات اور گھٹناؤں کے انجام دینے کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا۔ قرآن کی آیتوں پر چنتن کرنے کا مطلب ہے قرآن میں دیے گئے اپدیشوں اور شکشاؤں سے پاٹھ لینا اور واسطوک گیان و بودھ حاصل کرنا۔ اللہ کے کلام پر چنتن کرنا اور قرآن کے تتھیوں اور واسطوکتاؤں کو سمجھنے کے لیے پردوں کو ہٹانا اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کا سب سے اتم مارگ ہے۔ قرآن ان لوگوں کی نندہ کرتا ہے جو اللہ کی نشانیوں پر غور کیے بنا یہ آشا رکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تازگی اور جوتی پیدا ہو۔ قرآن ان پر تاکید کرتا ہے کہ قرآن کے بارے میں غور کریں۔ حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں غور کرو کیونکہ قرآن کے بارے میں چنتن دلوں کی بہار ہے۔
رمضان کے مہینے میں اللہ سے ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کے ارتھوں کو سمجھنے اور اس کی شکشاؤں پر عمل کرنے میں کامیاب بنائیں۔ اسی کے ساتھ اگلے کاریکرم تک آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ प्रियश्रोताओ, ईरान में 20 फरवरी बराबर 9 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अहमद अब्बास और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पिछले 2 दशकों के दौरान औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए और परमाणु तकनीक के मैदान में भी बड़ी सफलता हासिल की। ईरान ने यह विकास और प्रगति अमेरिका की अगुवाई में पश्चिम की ओर से डाली जाने वाली रुकावटों और दबावों के बावजूद हासिल की।
इस संदर्भ में 20 फरवरी दिन 1385 हिजरी शमसी बराबर 9 अप्रैल 2006 की तारीख मील का पत्थर है जब इस खबर का ऐलान हुआ कि ईरान यूरेनियम संवर्धन की तकनीक हासिल कर चुका है और नतंज परमाणु केंद्र में ईरान ने संवर्धन की साइकिल पूरी कर ली है। ईरानी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के स्तर पर परमाणु ईंधन की साइकिल मुकम्मल करने में सफल हुए और यह खबर प्रसारित हुई कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की तकनीक हासिल कर ली है और उसने ईरान निर्मित सेंट्रीफ्यूज मशीनों के जरिए संवर्धन की साइकिल पूरी की है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद ईरान के वैज्ञानिकों ने देश के भीतर नई नस्ल की सेंट्रीफ्यूज मशीनें तैयार कर लीं और इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को सूचित भी कर दिया। इसके साथ ही ईरान यूरेनियम संवर्धन की तकनीक से संपन्न देशों के क्लब में शामिल हो गया।
इसके बाद सुप्रीम कल्चरल रिवॉल्यूशन काउंसिल की मंजूरी से देश को सिविलियन परमाणु तकनीक से संपन्न बनाने में ईरान के युवा परमाणु वैज्ञानिकों के गौरवपूर्ण योगदान की सराहना के लिए 20 फरवरी दिन बराबर 9 अप्रैल को ईरान का राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा दिवस घोषित कर दिया गया।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने सिविलियन परमाणु तकनीक हासिल करने के लिए बड़े उतार चढ़ाव वाले रास्ते तय किए। ईरान ने 1958 में IAEA की सदस्यता ग्रहण की और 1968 में NPT पर हस्ताक्षर किए जिसे 1970 में ईरान के नेशनल असेंबली में पारित कर दिया गया। परमाणु तकनीक के मैदान में ईरान का सफर शुरू हुआ तो 1967 में अमेरिका ने ईरान को हल्के पानी का 5 मेगावाट का अनुसंधानिक रिएक्टर बेचा जिसे न्यूक्लियर मेडिसिन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अमरीकी कंपनी EMF ने ये रिएक्टर तेहरान विश्वविद्यालय में लगाया और वो काम करने लगा। अमेरिका ने वादा किया कि 20 मेगावाट ईंधन की सप्लाई करेगा।
ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के पास इस समय ये रिएक्टर है जबकि इसका ईंधन ईरान खुद ही तैयार कर रहा है। दूसरी ओर अध्ययनों के बाद ये फैसला किया गया कि परमाणु बिजली घर बनाकर परमाणु ऊर्जा की मदद से 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए। कुछ रिपोर्टरों के अनुसार 1974 में ईरान की ये योजना थी कि 20 साल की मुद्दत में परमाणु ईंधन की साइकिल स्थानीय रूप से मुकम्मल कर लेगा और 22 परमाणु बिजली घरों की मदद से 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस लक्ष्य के तहत जर्मनी और फ्रांस से कई समझौते किए गए। जर्मनी ने 1970 में बुशहर में 1,000 मेगावाट की क्षमता के 2 रिएक्टरों का निर्माण शुरू किया लेकिन काम में 85% प्रगति हो जाने के बावजूद इस्लामी क्रांति के सफलता के बाद जर्मनी ने काम वहीं पर छोड़ दिया। फ्रांस ने खोवेन में 1970 के दशक में 360 मेगावाट की क्षमता वाले रिएक्टर का निर्माण शुरू किया था जिसमें 10% प्रगति हुई थी। इस्लामी इंकलाब के आ जाने के बाद फ्रांस ने भी काम अधूरा छोड़ दिया।
ईरान में इस्लामी इंकलाब आने और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के बाद अमरीका और उसके क्षेत्रीय घटकों ने इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी कोशिशें की। इसके लिए अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल किए गए यहां तक कि ईरान पर 8 साल तक चलने वाला युद्ध थोप दिया गया जिसके नतीजे में ईरान का परमाणु कार्यक्रम 10 साल से ज्यादा समय तक ठप रहा। 1979 में इस्लामी इनकलाब आने के साथ ही पश्चिमी देशों ने ईरान में परमाणु कार्यक्रम पर काम रोक दिया। जंग के दौरान परमाणु प्रतिष्ठानों पर खासतौर पर बुशहर परमाणु बिजली घर पर कई बार हमले हुए जिसके नतीजे में इन इमारतों और वहां मौजूद मशीनों को नुकसान पहुंचा। 1989 से ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को बहाल करने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी। जर्मनी ने बुशहर के परमाणु रिएक्टर का काम पूरा करने से इनकार कर दिया तो तेहरान ने रूस को पार्टनर बनाया और 8 जनवरी 1995 को ईरान और रूस के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने परमाणु बिजली घर के यूनिट 1 को मिलकर बनाने और चालू करने पर सहमति की। 4 साल बाद इस समझौते की पुनर्समीक्षा की गई। ये बिजली घर 2011 में पूरा हुआ और चल पड़ा।
सन 2003 में इंकलाब विरोधी तत्वों ने पश्चिमी मीडिया में ये अफवाहें खूब फैलाई कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप ने अलग अलग बहानों से ईरान की सिविलियन परमाणु गतिविधियों में अड़चने डालने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन ईरान ने 2004 में नया संकल्प लिया और 9 अप्रैल 2006 की तारीख आने तक सारी पाबंदियों को नाकाम बनाते हुए परमाणु ईंधन साइकिल मुकम्मल कर ली। ईरानी वैज्ञानिकों ने नई नस्ल की सेंट्रीफ्यूज मशीनें बना ली और इस बारे में IAEA को भी सूचित कर दिया। इसके साथ ही ईरान यूरेनियम संवर्धन की तकनीक से संबंधित देशों की पंक्ति में शामिल हो गया और वो परमाणु क्लब का मेंबर बन गया।
ईरान में 8वीं सरकार के जमाने में ईरान ने यूरोपीय देशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसके नतीजे में धीरे धीरे परमाणु गतिविधियां और परमाणु अनुसंधान का काम स्थगित हो गया। नवीं सरकार का शासनकाल शुरू हुआ तो पहले ही साल में ईरान ने ऐलान किया कि स्वेच्छा से स्थगित किया गया यूरेनियम संवर्धन अब दोबारा शुरू किया जाएगा। ईरान ने सील तोड़कर इस्फहान UCF यूनिट में IAEA की निगरानी में काम शुरू कर दिया। ईरान ने नागरिक लक्ष्यों के तहत परमाणु गतिविधियां जारी रखी और दूसरी ओर पश्चिमी मीडिया ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ व्यापक पैमाने पर प्रोपेगंडा करता रहा। इसका नतीजा ये निकला कि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान का परमाणु मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेज दिया।
बड़े उतार चढ़ाव के बाद सुरक्षा परिषद से ईरान के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके बाद वार्ताओं का सिलसिला चला, जिसके नतीजे में जुलाई 2015 में ईरान और 6 विश्व शक्तियों अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और जर्मनी के साथ ईरान का परमाणु समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर दिया और स्वेच्छा से एडिशनल प्रोटोकॉल को स्वीकार करते हुए IAEA के निरीक्षकों को अनुमति दी कि वे ईरान के परमाणु केंद्रों पर अपनी निगरानी बढ़ा दें। इसके बदले में ये तय पाया था कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 के तहत उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा जो पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमरीका ने ईरान पर लगाए थे। ईरान ने तो परमाणु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल किया, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने का वादा पूरा करने में आनाकानी शुरू कर दी।
अमेरिका को इस बात पर गहरी चिंता थी कि ईरान का सिविलियन परमाणु कार्यक्रम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ईरान ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कई साल तक अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित कर दिया, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में इस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने का ऐलान करते हुए ईरान पर अत्यंत कठोर प्रतिबंध लगा दिए, तब ईरान ने भी जवाबी कदम उठाने की बात की। इस बीच यूरोपीय देशों ने भी अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल नहीं किया, तब ईरान ने पहले चरण में अपनी 5 प्रतिबद्धताओं पर अमल करना रोक दिया। इसके बाद देश की संसद में पारित होने वाले प्रस्ताव के आधार पर परमाणु कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए ठोस कदम उठाए गए। ईरान ने इस चरण में 20% के स्तर तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया। ईरान ने 60% के स्तर तक भी यूरेनियम का संवर्धन कर दिया।
ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों और संयंत्रों में विस्तार किया, जिस पर पश्चिमी देशों ने बार बार शोर मचाया। अमेरिका के क्षेत्रीय घटकों विशेष रूप से इसराइल को भी इस पर बड़ा एतराज हुआ। एडिशनल प्रोटोकॉल के पालन के संदर्भ में ईरान ने IAEA के साथ अपना सहयोग भी कम कर दिया। ईरान ने यूरोप की तरफ से वादा खिलाफी पर यह कदम उठाया। साथ ही ईरान ने ऐलान भी कर दिया कि अगर पश्चिमी देशों ने अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करना शुरू कर दिया तो ईरान भी अपनी पिछली पोजीशन पर लौट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मोहसिन जलीलवंद ने कहा कि यूरोप और अमेरिका के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित कर दें। अमरीकी चाहते हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता सीमित रहे।
ईरान तो नागरिक लक्ष्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके यूरोपीय घटक बेबुनियाद बहानों के जरिए ईरान पर परमाणु बम बनाने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। यह आरोप बाइडेन सरकार की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भी दोहराया गया। अमेरिका ने दावा किया कि वो इसका मुकाबला करेगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस नए बेबुनियाद आरोप से लगता है कि अलग अलग क्षेत्रों में ईरान की विस्तृत होती क्षमताओं से अमेरिका भयभीत है।
ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार कैटलिन जॉनस्टोन कहती हैं कि ईरान के बारे में बाइडेन की नीति भी वही ट्रंप की नीति है। अमेरिका और उसके यूरोपीय घटक इसराइल के साथ मिलकर बार बार ईरान पर आरोप लगाते हैं कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। यह आरोप तब भी लगाया गया जब वियना में ईरान के खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंधों को हटवाने के विषय पर बातचीत चल रही थी। ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि तेहरान ने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं और वो IAEA का सदस्य है। इस नाते सिविलियन लक्ष्यों के लिए परमाणु तकनीक विकसित करने का उसे पूरा अधिकार है। एक बात यह भी है कि IAEA ने अपनी रिपोर्टों में बार बार पुष्टि की कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिविलियन लक्ष्यों के मार्ग से हटा नहीं है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान में परमाणु उद्योग का राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रपति ने कई योजनाओं का किया अनावरण। तेहरान का कहना है कि फिलिस्तीनियों का समर्थन जारी रहेगा। अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया, कूटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता छोड़ने की अपील की। अमेरिका ने रूस और बेलारूस से व्यापारिक संबंध तोड़ लिए। श्रोताओ, हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। ताज़ा समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट देखना न भूलें, पता है parstoday.com/hi। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। खुदाफिज, शुभरात्रि। Thank you.